हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 43, 44, 45 एंड 46। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्था न निरोधलीलया गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिनाम् अन्तर्भवाय नुपलक्ष्यवर्त्मने। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। किरातहूणा द्रपुलिन्दपुल्कषा आभीरशुम्भा यवनाखसादय। ये नीच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदिता ये न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत्कलास्य स समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदता। भूतैर्महद्भिर् य इमा पुरो विभु निर्मायशेति यदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणनशो दशषोडशात्मक सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखं बुरुहासवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्ति।
दशाक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। दूसरा अध्याय दूसरा स्कंद अध्याय छे श्लोक संख्या 43, 44 and 45। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को जो कि ब्रह्मा जी के मुखारविंद से निकले हैं कृपा करके मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं
अहम् भवो यज्ञ इमा प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वर्लोकपाला खगलोकपाला नृलोकपालस्थललोकपाला गंधर्वविद्या धरसारणीशा ये यक्ष रक्षो रघुनाथनाथा ये वारिषीणां ऋषभापितॄणां दैत्येन्द्र सिद्धीश्वर दानवेन्द्रा अन्ये च ये प्रेतपिशाच भूत कूष्माण्डयादो मृगपक्षदीशा यत्किञ्च लोके भगवान् महस्वत् ओजस्वत् बलवत् क्षमावत् श्री श्री विभूत्यात्मवदत् भूताणम् तत्त्वं परं रूपवदस्वरूपम् अहम् भवो यक्ष इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भगवत् भवदादयश्च स्वर्लोकपाला खगलोकपाला नृलोकपालास्थललोकपाला गंधर्व विद्या धरसारणीशा ये यक्ष रक्षो रघुनाथनाथा ये वारिषीणां ऋषभापितॄणां दैत्येन्द्र सिद्धीश्वर दानवेन्द्रा अन्ये च ये प्रेतपिशाच भूत कूष्माण्डयादो मृगपक्षदीशा यत्किञ्च लोके भगवन् महस्वत् ओजस्वत् बलवत्क्षमावत् श्री श्री विभूत्यात्मवदद्भुताणां तत्त्वं परं रूपवदस्वरूपम्।
अत्यंत ही सुंदर श्लोक है जिसमें ब्रह्मा जी भगवान की महानता के विषय में कहते हैं। शब्दार्थ देखिए अहम् अहम् मना मैं ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भव मना शिव जी यज्ञ अर्थात भगवान विष्णु यानी मैं शिव और भगवान विष्णु यानी यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश वो तीनों इमे मना ये सब प्रजा ईश यानी जीवों के पिता जितने भी जो प्रजापति हैं वो सारे दक्ष आदया यानी दक्ष मरीचि मनु इत्यादि जितने भी प्रजापति हैं वो सारे
ये माना जो भवत यानी आप, नारद मुनि को कहते हैं आप। आदयच मतलब कुमारगण, सनत कुमार, संत कुमार, ये सनंदन, ये सारे कुमार उनके भाई। यहां ब्रह्मा जी सबके नाम लेके बता रहे हैं कि मैं, शिव जी, विष्णु भगवान, ये सारे प्रजापति, दक्ष इत्यादि मरीचि वगैरह, और आप और कुमारगण जो आपके जितने भी भाई हैं वो सब। स्वर्लोक का पाला मतलब स्वर्ग लोक के नायक, खगलोक का पाला मतलब अंतरिक्ष यात्रियों के नायक, नृलोक का पाला मनुष्यों के नेता, स्वर्ग लोक में रहने वाले, अंतरिक्ष में जितने भी दूसरे प्लैनेट्स हैं उसमें जितने भी नायक हैं वो, और मनुष्य यानी पृथ्वी पर रहने वाले। तललोक का पाला मतलब निम्न लोक में जो अतल वितल, तलातल रसातल, जो पृथ्वी के नीचे जितने लोक हैं उनके नायक। गंधर्व यानी जो गंधर्व लोक के वासी हैं वो। विद्याधर यानी विद्याधर लोक के जो निवासी हैं वो। चरण ईशा यानी चारणों के नेता, ये तथा अन्य। यक्ष यानी यक्षों के नेता। रक्ष यानी राक्षस। उर्ग अर्थात सांप। नागनाथा अर्थात नागलोक यानी पृथ्वी लोक के नीचे के नायक। ये यानी अन्य। वाह यानी भी ऋषिणाम ऋषियों के। ऋषभा प्रमुख। पितृणाम यानी पितरों के। दैत्येंद्र यानी नास्तिकों के नायक। सिद्ध ईश्वर यानी सिद्ध लोक के नायक, अंतरिक्ष के जो पुरुष हैं वो। दानव इंद्र यानी अनारियों के नायक, जो दानव हैं उनके जो नायक। अन्य यानी उनके अतिरिक्त च भी, ये जो प्रेत यानी मृतक, पिशाच यानी दुष्ट आत्मा, भूत यानी जिन, कुष्मांड यानी विशेष प्रकार का अनिष्ट आत्मा, यादव यानी जलचर, यादव यानी जलचर, मृगमन पशु, पक्षी अधिशा मतलब विशाल चील जो पक्षी हैं बड़े बड़े, यत यानी कुछ भी, किंच तथा प्रत्येक वस्तु, लोके यानी संसार में, भगवत यानी युक्त या अद्वितीय शक्ति संपन्न, जो भी बहुत ज्यादा ऐश्वर्यशाली है या सुंदर है या जो भी उसके अंदर कोई भी भग है यानी सर्वेश्वरी उसमें से कोई भी है। महस्वत यानी विशेष मात्रा। ओज सहस्वत यानी विशिष्ट मानसिक तथा इंद्रिय कौशल, जिसके अंदर कुछ न कुछ कौशल है, एक्सपर्ट है किसी भी चीज में। बलवत यानी बल से संपन्न। क्षमावत यानी क्षमा से युक्त। श्री अर्थात सौंदर्य। श्री अर्थात पाप कृत्य से लज्जित। विभूति यानी धन। आत्मवत यानी बुद्धि संपन्न। अद्भुत अर्थात आश्चर्यजनक। अर्णम अर्थात जाति। तत्वम अर्थात विशिष्ट सत्य। परम दिव्य। रूपवत रूप वाला। अस्वरूपम भगवत स्वरूप का नहीं। अनुवाद देखिए, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं स्वयं यानी ब्रह्मा, शिव जी यानी महादेव, भगवान विष्णु, दक्ष आदि प्रजापति, तुम यानी नारद तथा कुमारगण, इंद्र तथा चंद्र जैसे देवता, भूलोक के स्वामी, भूलोक के नायक, भूलोक के नायक, अधोलोक के नायक, गंधर्वलोक के नायक, विद्याधर लोक के नायक, चरणों लोक के नायक, यक्षों, राक्षसों तथा उरगों के नेता, महर्षि, बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े नास्तिक तथा अंतरिक्ष पुरुष तथा भूत प्रेत शैतान जिन, कूष्मांड बड़े बड़े जलचर, बड़े बड़े पशु तथा पक्षी इत्यादि, या दूसरे शब्दों में ऐसी कोई भी वस्तु जो बल, ऐश्वर्य, मानसिक तथा इंद्रिय कौशल शक्ति, क्षमा, सौंदर्य, विनम्रता, ऐश्वर्य तथा प्रजनन से युक्त हो, चाहे रूपवान या रूपविहीन, वे सब भले ही विशिष्ट सत्य तथा भगवान के रूप प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में वे वैसा नहीं है। वे सभी भगवान की दिव्य शक्ति के अंश मात्र है। अत्यंत सुंदर ब्रह्मा जी बताएं कि अलग से इंडिविजुअली किसी के अंदर कोई प्रभाव नहीं। कोई चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, चाहे पक्षी हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे किन्नर हो, चाहे नाग हो, चाहे जिन हो, शैतान हो, भूत हो, प्रेत हो, कुछ भी हो, शुद्ध आत्मा हो या फिर ना प्रेत आत्मा हो, दुष्ट आत्मा हो, जो भी हो, उनके अंदर अपनी कोई शक्ति नहीं है। उनके कर्मों के अनुसार उनको वो योनि मिली है और उनकी सारी शक्ति जो है वो भगवान की दिव्य शक्ति का अंश मात्र है। इसके अतिरिक्त उनका अपना कोई प्रभाव है ही नहीं। सारी जो शक्ति है, सारा जो बल है, सारा जो सौंदर्य है, सब कुछ भगवान का ही है। भगवान से पृथक और कुछ किसी के अंदर कोई क्षमता हो ही नहीं सकती है। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ऊपर की सूची में जिनके नाम हैं, उनमें ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा जी से लेकर शिव जी, भगवान विष्णु, नारद तथा अन्य शक्तिशाली देवता, मनुष्य, अति मानव, मुनि, ऋषि तथा अद्वितीय शक्ति एवं ऐश्वर्य वाले निम्न प्राणी, जिसमें भूत, शैतान, प्रेत, जिन्न, जलचर, पक्षी तथा पशु सम्मिलित हैं। ये सब परमेश्वर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु वास्तव में इनमें से कोई भी परमेश्वर नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी से नारद ने पूछा था ना कि संसार की सृष्टि का मालिक कौन है, परमेश्वर कौन है, तो आज ब्रह्मा जी इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि मुझे तो छोड़ो, मैंने तो ये संसार को पैदा नहीं किया है, मैं तो सेकंड क्रिएटर हूँ, लेकिन बाकी भी जो तुम्हें बहुत ज्यादा बलवान दिखे या बहुत ज्यादा ऐश्वर्यवान दिखे, तुम्हें लगे कि कहीं ये तो नहीं है मालिक, ये तो भगवान नहीं है, लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वे सब परमेश्वर प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे उनमें से एक भी परमेश्वर नहीं है। उनमें से हर एक में परमेश्वर की महान शक्ति का एक अंश ही रहता है। अल्पज्ञ मनुष्य भौतिक घटनाओं के आश्चर्यजनक कार्यों की देख कर उसी तरह विस्मित हो जाते हैं जिस प्रकार आदिवासी वज्रपात, विशाल वटवृक्ष या जंगल में अतुंग पर्वत देखकर विस्मित हो जाते हैं। कितना क्लियर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिस प्रकार आदिवासी होते हैं, तो यदि वन में कहीं पर वज्रपात होता है, बिजली कड़कती है, बड़े बड़े वृक्ष वटवृक्ष वो देखते हैं, तो कुछ भी ऐसा होता है जो उनके लिए आश्चर्यचकित होता है, तो वो क्या हो जाते हैं, उससे विस्मित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। वो समझते हैं कोई बहुत बड़ी महान शक्ति है जो कि परमेश्वर हो सकती है। उसी तरह अल्पज्ञ व्यक्ति क्या करते हैं, कुछ भी आश्चर्यजनक घटना देखते ना, कोई व्यक्ति होगा, भूत उसके अंदर घुस जाएगा, वो सोचेगा भाई इसके अंदर तो बहुत शक्ति है, या तो फिर है ना कुछ भी वो देखते हैं ना जब विस्मित करने वाला होता है, तो वो उसको महान समझकर उसकी शरण में जाना चाहते हैं। वो समझते हैं इसके द्वारा मुझे मेरा कल्याण होगा। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ऐसे विकसित मानवों के लिए भगवान की शक्ति का रंचमात्र प्रदर्शन भी मोहने वाला होता है। इससे आगे सभ्य मनुष्य देवी देवताओं की शक्ति से मोहित होते हैं। अतएव जो लोग भगवान के विषय में कोई वास्तविक जानकारी के बिना भगवान की सृष्टि की किसी भी वस्तु की शक्ति से चकित होते हैं, वे शक्ति या महान शक्तियों के पूजक कहलाते हैं। वो भगवान की ओर जानना नहीं, वो ये नहीं सोचते कि इस ये अगर महाशक्ति है तो इस शक्ति को शक्ति दी किसने, वो परम शक्ति कौन सी है। लेकिन छोटी छोटी शक्तियों में जो बिल्कुल साधारण लोग होते हैं वो तो थोड़े से चमत्कार, कोई जादूगिरी करके दिखा देना, कोई आश्चर्यजनक कोई सा भी कार्य करके दिखा देना, वो समझेगा बस ये बहुत महान है। चमत्कार को नमस्कार करते हैं, फिर उससे ऊपर आते हैं जो देवी देवताओं को मानते हैं। देवी देवताओं के अंदर कोई क्वालिटी थोड़े है, देवी देवता तो बस भगवान के साधारण सेवक हैं। उन वो भी तो गलतियां करते हैं ना। हम लोग देखते हैं शास्त्रों में पढ़ते हैं देवी देवताओं से कितनी गलतियां होती है। इंद्र जो देवताओं के जो आधिपति है, देवेंद्र है, उनसे कितनी गलतियां होती है, कभी चंद्र से, कभी गणेश से, कभी सब देवी देवता भी वो च्युत होने वाले, गलतियां करने वाले हैं। लेकिन एकमात्र भगवान है जो सर्वशक्तिमान है, जिसकी शक्ति से सबको शक्ति मिलती है। अब वो शक्ति कितनी मिलती है, उसके कर्मों के अनुसार उसको शक्ति मिलती है, उसने जो पहले कार्य किए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि बेवकूफों की तरह उन्हीं को सब कुछ मानकर उन्हीं की भक्ति की जाए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि अतिव जो लोग भगवान के विषय में कोई वास्तविक जानकारी के बिना भगवान की सृष्टि की किसी भी वस्तु की शक्ति से चकित हो जाते हैं, वे शक्ति या महान शक्तियों के पूजक कहलाते हैं। आधुनिक विज्ञानी भी प्राकृतिक घटनाओं की आश्चर्यजनक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से मोहित हो जाते हैं, अतिव वे भी शक्त है। ये निम्न कोटि के व्यक्ति धीरे धीरे उठकर सौर्य यानी सूर्य देवता के उपासक या गणपत्य यानी गणपति के रूप में जनता जनार्दन या दरिद्र नारायण इत्यादि अर्थात जनता के पूजक बन जाते हैं, और फिर अमर आत्मा की खोज में शिवजी की उपासना करने वाले के स्तर तक उठते हैं। फिर वे भगवान विष्णु परमात्मा आदि की पूजा में करने वाले स्तर तक पहुंच जाते हैं, किंतु उन्हें आदि भगवान मूल विष्णु रूप गोविंद या कृष्ण की कोई जानकारी नहीं होती। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी सीरीज में बता रहे हैं, पहले क्या करते हैं वो निम्न कोटि के व्यक्ति छोटी छोटी चीजों को देखकर हैरान हो जाते हैं, फिर थोड़ा ऊपर जाते हैं सूर्य लोक के उपासी बन जाते हैं, फिर थोड़ा ऊपर जाते हैं गणपति के रूप में जो है ना उनकी पूजा करते हैं, फिर क्या करते हैं वो सोचते हैं कि सोशल वर्क करना चाहिए, फिर जनता दरिद्र नारायण जनता जनार्दन की पूजा करना शुरू कर देते हैं, फिर क्या सोचते हैं आत्मा के विषय में खोज करते हैं, और फिर शिव जी की उपासना कर देते हैं, ऊपर उठते उठते हैं फिर भगवान विष्णु के बारे में सोचते हैं, हृदय में बैठे हुए परमात्मा के बारे में। ऐसे करते 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 बहुत समय बीत जाता है, लेकिन जो मूल रूप गोविंदम आदि पुरुषम ब्रह्मा जी जिसकी उपासना करते हैं उनकी जानकारी उनको नहीं होती। अन्य विधियों में कुछ लोग जाति राष्ट्रीयता पक्षी पशु प्रेत शैतान इत्यादि के पूजक होते हैं। जनता में कष्टों के स्वामी शनिदेव तथा चेचक की देवी शीतला देवी की पूजा सामान्य है, और ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो जनता के दरिद्रों की पूजा करते हैं। अति विभिन्न व्यक्ति समाज तथा परिवार भगवान की किसी न किसी शक्तिमय अभिव्यक्ति की पूजा करते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कितना एक एक शब्द को क्लियर करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मेरे ऊपर मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरे इतना दुर्भाग्य है, लगता है शनिदेव जो है ना वो मुझे नर रहा है, तो शनिदेव की पूजा करना शुरू कर देते हैं। कोई शीतला माता की पूजा करता है कि ये शक्ति है आदि भवानी है। तो ये सब अतिव विभिन्न व्यक्ति समाज तथा परिवार भगवान की किसी न किसी शक्ति में अभिव्यक्ति की पूजा करते हैं, जहां से उनको लगता है कि यहाँ पर शक्ति है वहां से पूजा उसकी पूजा प्रारंभ कर देते हैं। वो शक्ति उसमें आई कहाँ, वो कहाँ से है, और फिर वो शक्तिमान कौन है उसके विषय में नहीं सोचते, और उससे त्रुटिवश ईश्वर समझ लेते हैं, लेकिन इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया है कि इनमें से कोई भी परमेश्वर नहीं है। वे आदि शक्ति शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के मूल मोर पंख से आधा उधार लिए हुए पंख जैसे हैं। जब भगवत गीता में भगवान कृष्ण केवल अपनी पूजा करने का उपदेश देते हैं, तो यह समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण की पूजा में उपर्युक्त सब या सभी की पूजा सम्मिलित है, क्योंकि भगवान कृष्ण में सभी सम्मिलित हैं। बहुत ही सुंदर कि भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति प्रत्येक जीव और प्रत्येक शक्तिमान वस्तु में और व्यक्ति में है। तो अगर हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो इसका मतलब है प्रत्येक जीव की पूजा होगी, जो भी शक्तिशाली है, ब्रह्मा शिव गंधर्व किन्नर अप्सराएं देवता दैत्य राक्षस जितने भी शक्तिमान हैं, उन सब की शक्ति भगवान के कारण है, वो सब भगवान के ही अंश मात्र है। इसे जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है तो समझो सब की पूजा उसके अंदर सम्मिलित है। आगे बताते, जब वैदिक साहित्य में भगवान को रूप विहीन बताया जाता है तो यह समझना चाहिए कि ऊपर जितने रूप बताए गए हैं वे सब विश्व ज्ञान के अनुभव के अंतर्गत भगवान की दिव्य शक्तियों के ही विभिन्न प्रदर्शन हैं। इनमें से कोई भी भगवान के दिव्य रूप का यथार्थ प्रतिनिधित्व नहीं करता, किंतु जब भगवान पृथ्वी पर या ब्रह्मांड के भीतर कहीं भी अवतरित होते हैं तो अल्पज्ञानी लोग उन्हें भी अपने जैसा समझने की भूल करते हैं और इस तरह वे ब्रह्म को रूप विहीन या निर्विशेष बताते हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो, जब भगवान प्रत्येक वस्तु में है और फिर ये भी बताया गया कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, इसका मतलब है भगवान का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। लेकिन जो भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो उनका एक दिव्य स्वरूप होता है, लेकिन वो अल्पज्ञ होते हैं, वो जानते नहीं है कि दिव्यता के विषय में आध्यात्मिकता के विषय। फिर वो क्या सोचते हैं कि जो भगवान अवतार लेते हैं ना, जैसे भगवान कृष्ण जब छोटे होते हैं और फिर वो बाल लीलाएं करते हैं, तो वो समझते ये तो हमारे जैसा कोई साधारण है, ब्रह्म का तो कोई स्वरूप होता ही नहीं, ब्रह्म को रूप विहीन या निर्विशेष मानते हैं। वास्तव में भगवान ना तो रूप विहीन है और ना ही वे विराट रूप के भीतर अनुभव किए जाने वाले बहु रूपों में से किसी से संबंध होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा जी के उपदेश का पालन करते हुए भगवान विषय सत्य को जानने का प्रयास करें। श्री प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे कि भगवान कोई हमारी मनोकल्पना से नहीं बनाया जा सकता कि हम सोच लें कि ये भगवान हो सकता है या भगवान रूप विहीन हो सकता है या भगवान प्रत्येक वस्तु के किसी भी शक्तिशाली वस्तु में नहीं। भगवान का एक अस्तित्व है, भगवान का एक स्वरूप है, भगवान का एक लोक है, भगवान प्रत्येक वस्तु में शक्ति तो प्रदान करते हैं, प्रत्येक जीव को जो ऐश्वर्य है, जो शक्ति है, जो पावर है, वो प्रदान तो करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहिए और भगवान विषय सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। महाजनों ये न गता सुपंथा, जैसे ब्रह्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु के परमेश्वर जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मुझे उस स्तर तक पहुंचना है। कितना तो क्लियर लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवतम जो पढ़ता है, श्रीमद् भगवत गीता जो पढ़ता है, उसे भगवान विषय जितने भी संदेह है ना, वो छोड़ देने चाहिए। कभी कभी भक्त भी बनने के बाद सोचते हैं कि नहीं नहीं उसकी पूजा नहीं करेंगे तो क्या होगा, कहीं वो नाराज न हो जाए, कहीं उस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, शनि देव की पूजा करनी चाहिए, उसकी पूजा। किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को सरेंडर करने की आवश्यकता नहीं है, बस सबको प्रणाम किया जाए, आदर किया जाए, एक अलग बात है, लेकिन शरणागत होने के लायक, पूजा करने के लायक, भक्ति करने के लायक, प्रेम करने के लायक यदि कोई है तो वो श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भक्त को वन पॉइंटेड होना चाहिए। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही है गुरु नंदन, भगवान बोलते एक वन पॉइंटेड बुद्धि होनी चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, बस। यहां तक यदि आ गई ना बुद्धि तो फिर कहीं और चक्कर खाने की जरूरत नहीं है। कृष्ण प्रसन्न, जीव प्रसन्न, देवता प्रसन्न, यक्ष प्रसन्न, राक्षस प्रसन्न, दैत्य प्रसन्न, सब प्रसन्न हो जाएंगे। एक कृष्ण एक साधे सब सधे, फिर किसी और की ओर देखने की जरूरत नहीं। ब्रह्मा जी कृष्ण के अंदर, शिव जी कृष्ण के अंदर, विष्णु कृष्ण के अंदर, हर एक देवी देवता कृष्ण के अंदर, तो बस कृष्ण की पूजा करनी है, कृष्ण को प्रेम करना है और सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वो गोविंद जो प्रत्येक वस्तु और व्यक्तियों की परमेश्वर है, परम पावर है, जिसने सबको पावर प्रदान किया है, बस उसकी ही शरण में जाना है। इतना जीव को अपनी बुद्धि को विकसित कर लेना चाहिए। इन शास्त्रों का आधार यही है, इन शास्त्रों को पढ़ने का यही एक मकसद है कि जीव अपने वास्तविक कल्याण की को समझकर अपने मनुष्य जीवन को सफल करे। इतना सब बताने के बाद ब्रह्मा जी नारद को कहते हैं कि जीव का एक ही काम होना चाहिए कि वो भगवान के विषय में ज्यादा से ज्यादा श्रवण करे, क्योंकि जितना जितना जीव भगवान के विषय में श्रवण करता जाएगा ना, उतना उतना जीव का हृदय पवित्र होगा, जीव के कर्ण पवित्र होंगे और वो वास्तविक भगवान को समझकर उसको प्रेम करने लगेगा। इसलिए एक मनुष्य का काम यही होना चाहिए कि भगवान के विषय में श्रवण, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा संसार के विषय में श्रवण किया है ना, आज भी हम किसी के विषय में सुनते हैं ना कि उसके अंदर इतनी शक्ति है, देखो उस वो बाबा है, वो क्या कुछ दाने पढ़ के देता है, तो उससे ना जो हमारी प्रॉब्लम होती है, किसी को बेटा नहीं होता, बेटा पैदा हो जाता है, किसी का धन मतलब कारोबार सही नहीं चलता है तो वो हो जाता है, तो सब लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगते, क्योंकि संसार में ना यही चीज जहाँ पर चमत्कार दिखता है ना उधर सरेंडर हो जाता है, क्योंकि सुनते उसके विषय में ना ज्यादा ज्यादा जिसके बारे में सुनते जाएंगे ना तो उसकी ओर आकर्षण होता जाएगा। इसलिए यदि हम भगवान को सरेंडर करना चाहते हैं, यदि हम वास्तविक लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं ना, तो ये कानों को ना रिजर्व कर देना चाहिए भगवान के विषय में सुनना है, बस। जहाँ पर भगवान की बात नहीं हो ना वहां पर तो सुनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किसी और की महानता यदि हम सुनते ना, कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की महानता सुनना अपने टाइम को वेस्ट करना है। इसलिए अपने टाइम का सदुपयोग करके केवल भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। इसलिए नारद मुनि को ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राधान्यतो यानुष आमनान्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्ना आपीयतां कर्णकषाय यशोषा अनुक्रमिष्ये त इमान् सुपेशान्। प्राधान्यतो यानृष आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्ना। यशोषान् अनुक्रमिष्ये त इमान् सुपेशान् प्राधान्यतो या नृष आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य पुम्ना आपीयतां कर्णकषाय शोषा अनुक्रमिष्ये त इमान् सुपेशान् शब्दार्थ प्राधान्यतः यानी मुख्यतः यान यानी ये सब ऋषि हे नारद आमनंति यानी पूछते हैं लीला यानी लीलाएं अवतारान सभी अवतार पुरुषस्य भगवान के जितने भी अवतार हैं उनको भूमना सर्वश्रेष्ठ परम आपीयताम यानी तुम्हारे द्वारा आस्वादन के लिए अब मैं आपके लिए मैं वो भगवान की अवतारों की लीलाएं सुनाऊंगा इससे क्या होगा कर्ण कषाय शेषान कर्ण यानी कान कषाय यानी मेल शोषण मतलब बाप बन जाने वाला कर्ण के अंदर जो तुम्हारी भौतिक जगत की मेल पड़ी हुई है ना वो बाप बनकर निकल जाएगी अनुक्रमिष्य यानी एक के बाद एक वर्णन करेंगे ते वे इमान जिस रूप में वे मेरे हृदय में हैं सुपेशान सुनने में मधुर मेरे हृदय में भगवान की मधुर मधुर लीलाएं सदैव बनी रहती हैं और तुम भगवान के विषय में जितना जितना सुनोगे ना उतना उतना तुम्हारा हृदय पवित्र होगा तुम्हारे कान की मेल की गंदगी सारी साफ हो जाएगी इसलिए अब मैं तुम्हें क्या करूंगा अनुक्रमेशेन एक के बाद एक भगवान के अवतारों के विषय में बताऊंगा तो तुम उसे सावधान होकर सुनना अनुवाद हे नारद अब मैं एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा जो लीला अवतार कहलाते हैं उनके कार्यकलापों के सुनने से कान में संचित सारा मैल हट जाता है ये लीलाएं सुनने में मधुर है और आस्वाद्य है अतएव ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.5.8 के प्रारंभ में कहा गया था कि मनुष्य श्रवण करके तब तक पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पाता जब तक उसे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने का अवसर प्राप्त न हो अतएव इस श्लोक में ब्रह्मा जी भी भगवान की दिव्य लीलाओं के बताने की महत्ता पर बल देना चाहते हैं कि किस प्रकार भगवान इस भौतिक लोक पर आते हैं और स्वयं को प्रकट करते हैं प्रत्येक जीव में सुहावने समाचार सुनने की प्रवृत्ति होती है अतएव हम में से प्रत्येक व्यक्ति को रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित समाचार तथा वार्ताएं सुननी अच्छी लगती हैं लेकिन कठिनाई यह है कि इन सारे समाचारों को सुनकर कोई भी व्यक्ति हृदय में तुष्टि का अनुभव नहीं करता इस असंतुष्टि का कारण यह है कि हमारे अंतरतम के साथ इन संवादों का कोई मेल नहीं हो पाता इस दिव्य ग्रंथ का सृजन श्रील व्यास देव ने भगवान के कार्यकलापों को सुनाकर सामान्य लोगों को अधिकाधिक संतुष्टि प्रदान करने के उद्देश्य से किया है श्रील प्रभुपाद जी कितना सुंदर बताएं कि हर कोई चाहता है कि मैं कुछ सुनूं, सुनना चाहता है ना और पूछता है क्वेश्चन भी है ना चार लोग बैठे होंगे चुप करके बैठे होंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक निकालेंगे कि सामने वाला कुछ बताए और मैं सुनूं उसके नाम पूछेंगे कहाँ रहते हो पूछेंगे उसके एरिया के विषय में पूछेंगे कुछ लोग समाचार में रेडियो को सुनेंगे कुछ टीवी में न्यूज सुनेंगे वो सुनने की प्रवृत्ति सबके अंदर है और वो सोचते हैं कि भौतिक जगत के विषय में श्रवण करके ही मुझे संतुष्टि मिलेगी और फिर और भी ध्यान से सुनते कोई अगर सुनाता ना कोई ऐसी बात फिर बोलते हाँ और हाँ हाँ ऐसे करते 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 पूरा जीवन तो गुजर गया है आधे से ज्यादा, सुनते आ रहे ना, संतुष्टि तो नहीं हुई। तो यदि संतुष्टि ही चाहिए तो उसके विषय में सुनो जो सच्चित आनंद घन है। तो जितना जितना हम भगवान के विषय में सुनेंगे ना, उतना उतना आनंद और तृप्ति बढ़ती जाएगी। एक तृप्ति भी बढ़ेगी, साथ में तृष्णा भी बढ़ेगी। हृदय तो आनंदित होगा, लेकिन भगवान के विषय में और भी श्रवण करने की इच्छा। तो ये जो श्रीमद् भागवत है ना, वो स्पेशल इसी के लिए बनाया गया है कि भगवान के कार्य कलापों को सुनाकर लोगों को संतुष्टि प्रदान की जाए, क्योंकि नारद मुनि ने उन्हें इसके लिए आदेश दिया था। भगवान के ऐसे कार्यकलाप मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला भौतिक सृजनात्मक शक्ति की संसारी अभिव्यक्ति से संबंधित है, और दूसरा देश काल के अनुसार विभिन्न अवतारी रूपों में उनकी लीलाओं से संबंधित है। दो प्रकार के, एक तो भगवान की प्रत्यक्ष लीला जो भगवान अलग अलग अवतारों में करते, और दूसरा भगवान ने भौतिक संसार का सृजन किस तरह से किया, सृजनात्मक शक्ति की संसारी अभिव्यक्ति के विषय में है। भगवान के असंख्य अवतार हैं, जिस तरह नदी में निरंतर तरंगे आती जाती हैं, अल्पज्ञानी व्यक्ति भौतिक जगत में भगवान की सृजनात्मक शक्तियों में अधिक रुचि लेते हैं, और भगवान से संबंधित विच्छेद रहने के कारण वे वैज्ञानिक शोध के नाम पर सृष्टि संबंधी अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। किंतु भगवान के भक्त यह बलि बांधी जानते हैं कि इस तरह भगवान की भौतिक शक्तियों के घात प्रतिघात से सृजनात्मक शक्तियां कार्य करती हैं। साइंटिस्ट जो होते हैं वो अलग अलग है ना, वो ऐसे रिसर्च करते हैं, अलग अलग शोध करते हैं कि संसार में ये कैसे बना, वो कैसे बना, ऐसे कैसे, तो ये बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं। अल्पज्ञानी व्यक्ति भौतिक जगत में भगवान के सृजनात्मक शक्तियों में अधिक रुचि नहीं लेते, और भगवान से क्योंकि उनका संबंध छूट गया है, संबंध विच्छेद रहने के कारण वे वैज्ञानिक शोध के नाम पर सृष्टि संबंधी अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। वो नई नई बातें बताएंगे, ये कैसे बना, वो कैसे बना। किंतु भगवान के भक्त ये बलि बांधते जानते हैं कि किस तरह भगवान की भौतिक शक्तियों के घात प्रतिघात से सृजनात्मक शक्तियां कार्य करती है। भक्तों को पता है जो कुछ भी है वो भगवान के द्वारा बनाया गया है, और किस तरह भगवान संसार को रचते हैं, उसको पालते हैं, उसका संहार करते हैं, सब कुछ भगवान के भक्त जानते हैं। अतएव जब भगवान इस भौतिक जगत पर स्वयं अवतरित होते हैं तो भगवान के दिव्य कार्यकलापों में अधिक रुचि लेते हैं। भक्त क्या सोचते हैं, भले संसार में कुछ भी हो रहा है, साइंटिस्ट कुछ भी बोल रहे हैं, न्यूज में कुछ भी आ रहा है, इन चीजों में अधिक रुचि नहीं लेते, वो तो भगवान के दिव्य कार्यकलापों को श्रवण करने में रुचि लेते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान के ऐसे कार्यकलापों का इतिहास है, और जो लोग श्रीमद् भागवतम को सुनने में रुचि लेते हैं उनके हृदयों पर संचित संसारी धूल साफ हो जाती है। बाजार में हजारों रद्दी किताबें हैं, किंतु जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम में रुचि उत्पन्न कर लेता है वह ऐसे गंदे साहित्य में रुचि खो देता है। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी भगवान के प्रमुख अवतारों का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे नारद उन्हें दिव्य अमृत की भांति पी सके। वास्तव में भक्तों, सुनने लायक यदि कोई चीज है तो वो श्रीमद् भागवत। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि भक्ति को बढ़ाना है, यदि भगवान के प्रति प्रेम को उत्पन्न करना है, तो कुछ मत करो, भागवत को श्रवण करो। जैसे जैसे हम भागवतम को श्रवण करते जाएंगे, वैसे वैसे भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता जाएगा। बस यही तो जीव के मनुष्य होने का सार्थक है। अगर जीव का मनुष्य जीवन सार्थक है या नहीं है, इसका यदि मापदंड दिया जाए ना, तो कैसे है कि आपको श्रीमद् भागवतम श्रवण करने की कितनी इच्छा है। बस यही ज्यादा से ज्यादा हमें इच्छा करनी चाहिए कि हमें श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना है, श्रवण करना है, श्रवण करना। तो भगवान कोई ना कोई योजना बना ही देते हैं, हमारी तीव्रता को, हमारी तीव्र लालसा को भगवान देखते हैं। क्योंकि संसार में ज्यादातर लोग संसार के विषय में जानना चाहते, तो भगवान उनके लिए वैसी ही योजना करते हैं, और भक्त भगवान के विषय में श्रवण करना चाहते तो भगवान उनको वैसा ही प्रोवाइड करते। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्त तैव पश्यामि। तो हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाओं को श्रवण करने की लालसा रखनी चाहिए, क्योंकि साफ साफ श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि धर्म सुनिश्चित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवल। आप अपने सारे कार्यकलापों करो, लेकिन यदि अपने सारे धर्मों का पालन करने के बावजूद भी भगवान के इन दिव्य कथाओं को श्रवण करने की इच्छा नहीं है ना, तो सारा जीवन फिजूल, श्रम एव ही केवल। तो यदि इच्छा नहीं है ना कथा सुनने की, फिर भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मेरे हृदय में भगवान की कथाओं, आपकी कथाओं को श्रवण करने की तीव्र लालसा प्रदान कर दो। इच्छा जैसे हम इच्छा करेंगे ना, भगवान ऐसा हमें प्रोवाइड करेंगे, और जैसा हम इच्छा करेंगे तो भगवान के कोई ना कोई माध्यम से हमें वो प्रदान करेंगे। इसलिए सदैव ये देखना चाहिए कि मेरे हृदय में इच्छा कितनी है, अपनी इच्छा को, अपनी श्रवण करने की और सेवा करने की जो इच्छा है उसको बढ़ाने के लिए सदैव भगवान से, गुरु महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंध के अंतर्गत पुरुष सूक्त की पुष्टि नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। गौर प्रेमानंदे।